दिन भर 10 जून सोमवार सभी सुनने वालों को मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। कठुआ गैंगरेप केस में सजा का ऐलान, दोषी ठहराए गए 6 लोगों में से 3 को उम्र कैद। पीड़ित के परिजन बोले,
अच्छा हुआ कि ये फैसला जल्दी हुआ, हम इससे बहुत खुश हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, जो कानून ने फैसला किया है तो हमें मानना ही पड़ेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार।
आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन थी बेल एक्सटेंशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो चुके हैं।
और नाटककार, फिल्मकार और अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन।
गिरीश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है, अच्छे लेखन निर्देशन फिल्मों में किया है, लेकिन साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आई देश में, आक्रोश दिखाना, प्रोटेस्ट करना।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। बहुचर्चित कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद और सबूत मिटाने के दोषी 3 पुलिसकर्मियों को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। मुसलमान खाना बदोश जनजाति की 8 साल की बच्ची की बीते साल जनवरी में अगवा किए जाने के बाद हत्या कर दी गई थी। बच्ची के साथ गैंगरेप की भी पुष्टि हुई थी। इस मामले में अदालत ने 1/7 अभियुक्त को बरी कर दिया है, जबकि 1 नाबालिग अभियुक्त पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कुछ हिंदूवादी समूहों ने अभियुक्तों के समर्थन में मार्च भी निकाला था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हवाला के पैसे बाहर भेजने के आरोप हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जरदारी और उनकी बहन की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब का कहना है कि करोड़ों डॉलर बाहर भेजने के लिए दर्जनों फर्जी खाते बनाए गए थे। जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें और उनकी बहन को निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति जरदारी भ्रष्टाचार के आरोप में कई साल जेल में रह चुके हैं। माली से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक देश के मध्य इलाके में हुए एक नरसंहार में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। इस घटना के बारे में अभी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि हमला डोगोन नस्ली समूह के एक गांव पर हुआ है। माली में हाल के सालों में कई बड़े हमले हुए हैं, इनमें से कुछ नस्ली हमले हैं और कुछ जिहादियों ने किए हैं। एक अभूतपूर्व कदम में रूस के प्रमुख अखबारों ने एक जैसे फ्रंट पेज प्रकाशित करते हुए लिखा है, वी आर इवान गोलुनोफ, यानी हम भी इवान गोलुनोफ हैं। गोलुनोफ रूस के एक प्रमुख खोजी पत्रकार हैं, जिन्हें बीते सप्ताह हिरासत में लिया गया था। उन पर बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि उच्च स्तरीय संस्थानों में भ्रष्टाचार उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सरकार ने कहा है कि देश के महाधिवक्ता इस पर पूरा ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता मारिया कोसोवोकोवा ने अखबारों के इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा,
Я, конечно же, искала три газеты, которые сегодня выходят с такой гениальной обложкой.
बेशक मैं आज प्रकाशित 3 अखबार मंगा रही हूँ, जिन्होंने शानदार फ्रंट पेज प्रकाशित किया है। मैं ये अखबार अपने पास रखना चाहती हूँ, इस मामले के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हो रहा है और मैं हर संभव तरीके से इवान की मदद करना चाहती हूँ। मारिया कोसोवोकोवा के शब्द। हांगकांग में रहने वाले बहुत से लोगों ने कहा है कि वो उस प्रस्तावित कानून के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन करेंगे, जिसके तहत हांगकांग वासियों पर चीन में मुकदमा चलाया जा सकेगा। हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम ने कहा है कि वो इस विधेयक को बुधवार को दोबारा पेश करेंगी। इसे हांगकांग का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी माना गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि वो बुधवार को होने जा रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयार हैं। हांगकांग पुलिस के प्रवक्ता कोंग विंग येयुंग ने कहा,
The Hong Kong police force is professional and has the experience to handle such a large scale of event.
Hong Kong की पुलिस एक पेशेवर बल है और उसके पास ऐसे बड़े प्रदर्शनों से निपटने का अनुभव है। ऐसे हर आयोजन से पहले हम खतरों की गहन और विस्तृत समीक्षा करते हैं और जरूरी बल तैनात करते हैं, और हमें विश्वास है कि इस आयोजन में भी हम प्रभावशाली निगरानी रखेंगे। हांगकांग पुलिस प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अल्बानिया के सत्ताधारी दल ने इस महीने होने वाले नगरपालिका चुनाव रद्द किए जाने के बाद देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। BBC समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। सोमवार यानी आज बड़ी खबरों का दिन बन गया। चैंपियन क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। नाटककार और फिल्मकार गिरीश कर्नाड का निधन हो गया। वहीं पाकिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। बात होगी इन सभी खबरों की, लेकिन दिन भर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। पंजाब के पठानकोट की एक स्पेशल कोर्ट ने आज जम्मू के कठुआ गैंगरेप केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 7 में से 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया। इनमें से संजी राम समेत 3 को उम्र कैद की सजा दी गई है। सबूत मिटाने के दोषी ठहराए गए 3 पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। बीते साल के इस मामले में एक 8 बरस की नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस केस को लेकर देश भर में गुस्से की लहर देखी गई थी। पूरी रिपोर्ट सुनिए माजिद जहांगीर से।
आज सुबह फैसला आने से पहले पीड़िता की मां के चेहरे पर मायूसी और उदासी की झुर्रियां साफ साफ नजर आ रही थी। कश्मीर में एक पहाड़ी पर एक कोने में गुमसुम बैठी मां सोच की अथाह गहराइयों में खो गई थी, लेकिन अदालत के फैसले ने चंद सेकंडों में मां की दुनिया ही जैसे बदल दी। आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे।
जिसरे हमारी लड़की को गया सजा बोला, इसरे दोनों को भी सजा। कैसे हमारी लड़की मारा, ये छोटा बच्चा एक चांद नहीं मार सकता, हमको इतनी प्यारी लगती थी।
हालांकि दोषियों के खिलाफ सुनाई गई सजा पर मां ने बताया कि उन्हें और भी खुशी होती अगर फांसी की सजा सुनाई जाती।
वो खुशी तो नहीं मनाता, हम ये चाहते थे उनको फांसी हो, ठीक है जो उन्हें बोल दिया वो ही ठीक है। हम ये बोलते हैं फांसी, हमारे दिल से ये निकलता है उसको फांसी होना चाहिए। फांसी क्यों, जो हमारे भी अंदर थोड़ा ठंड पाएगा, हमारे अंदर बहुत दुख है।
बच्ची के चचा का कहना था कि अदालत ने जो भी फैसला सुनाया हमें उसका सम्मान है।
देखिए, हमें 1 साल हो गया इस फैसले का इंतजार था, और अच्छा हुआ कि ये फैसला जल्दी हुआ, हम इससे बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कानून की इज्जत करते हैं, जो कानून ने फैसला किया है तो हमें मानना ही पड़ेगा।
बीते साल जनवरी में कठुआ के रसाना इलाके में उनकी बेटी पशु चराने गई थी और वापस नहीं लौटी। 1 हफ्ते के बाद उसका शव मिला। इस मुस्लिम बच्ची के बलात्कार में सभी आरोपी हिंदू थे और बच्ची को अगवा करके एक मंदिर में बंधक बनाया गया था। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो गया था। बच्ची की बड़ी बहन के मुताबिक वो माहौल अब भी बदला नहीं है।
हिंदू से बहुत घबराहट होती है, क्यों बाहर नहीं सकते, जहाँ पे मुसलमान होते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, जी ये मुसलमान ही है जा सकते हैं, मन नहीं कर रहा उनके घर पे जाने का।
इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य शहरों में बच्ची के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया था। पीड़िता के वकील मुबीन फारूकी ने अदालती फैसला आने के बाद बताया,
विशाल को छोड़ के बाकी सारे दोषी करार दिए रेप चार्जेस। सर दीपक खजूरिया, प्रवेश कुमार एंड सांझी राम, 376D, 302, 302, 303, 120B, 343, 376B।
वहीं दोषियों के वकील AK सहानी बताते हैं,
ये तो जाएंगे सारे ही, 6 के 6 लोग जाएंगे ये जो इसमें अपील में। तिलकराज भी जाएगा, नंद दत्ता भी जाएगा, और बाकी 3 भी जाएंगे, और प्रवेश है वो भी जाएगा, और सुरेंद्र भी जाएगा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में, क्योंकि इसकी जम्मू कश्मीर में अपील हो ही नहीं सकती है।
अदालत से फैसला आने के बाद दोषियों के परिवार वालों ने BBC के साथ बातचीत में बताया कि वो केस में CBI जांच चाहते हैं। इस पूरे केस के मास्टरमाइंड सांझी राम की पत्नी दर्शना देवी और बेटी मोनिका का कहना था,
सर जांच पे ही सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर विशाल निर्दोष है तो बाकी सब भी निर्दोष हैं। ये तो पूरी जांच ही उन्होंने फ्रॉड की हुई थी, सारी खुद से मनगढ़ बनाई हुई थी। अब भगवान तो साथ दे रहे हैं, हो सकता है कि अब उनको भी छोड़ दें, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हाई लेवल चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, CBI चाहिए इसके लिए।
इस घटना के बाद हिंदू एकता मंच ने अभियुक्तों के समर्थन में रैली निकाली थी और तिरंगा लहराया था। उस रैली में BJP के 2 मंत्री भी शामिल थे, जिन्हें बाद में अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अब परिवार फिर से चलने को तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि कड़ी सजा का आम लोगों की सोच पर गहरा असर पड़ेगा और धीरे धीरे खौफ के इस माहौल में कमी भी आएगी। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
इस बीच इस मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जम्मू से स्थानीय पत्रकार मोहित कंधारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहित, इस मामले में वो दौर भी देखा गया जब अभियुक्तों के पक्ष में रैलियां निकाली गईं। फैसला आने के बाद क्या स्थिति है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जो बार एसोसिएशन जम्मू थी, आपको याद होगा उन्होंने जम्मू में बंद की कॉल दी थी और उन्हीं के कठुआ विंग ने जब लॉ ऑफिसर्स चार्जशीट प्रेजेंट करने गए थे कठुआ कोर्ट में, वहां पर हंगामा किया था और अधिकारियों को रोका था कोर्ट परिसर में दाखिल होने से। आज उन्होंने खामोशी ओढ़ रखी है। हमने संपर्क करने की कोशिश की बार एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रधान बीएस लातिया से, उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इस समय के जो बार के अध्यक्ष हैं उनसे जब जानना चाहा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है वर्डिक्ट पे, उन्होंने कहा मैं उस समय भी बार के फैसले के साथ नहीं जुड़ा था, आज भी मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बाकी जो आम जनता है और या गली मोहल्लों में जो इस बात की चर्चा हो रही है, लोगों का ये कहना है कि अगर क्राइम ब्रांच ने जांच में 7 लोगों को बनाया था, दोषी बनाया था और आज सांझी नाम के बेटे को छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं सवाल उन अधिकारियों में भी जुड़ना चाहिए कि उन्होंने क्या जोर जबरदस्ती से एक बच्चा जो मेरठ में पढ़ रहा था, किन वजूहात की वजह से, किन सर्कमस्टांसिस में उसका नाम चार्जशीट में जोड़ा और जो उसने अपना जो लंबा समय जो वेस्ट हुआ उसके कैरियर का, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसी के चलते परिवार ने भी मांग की है, इन अक्यूज के सांझी नाम के परिवार ने, और प्रधानमंत्री से और गवर्नर से ये अपील की है कि इसकी सीबीआई जांच हो, ताकि जिस प्रकार से कोर्ट ने उनके भाई को बरी किया है, बाकी अभियुक्त जो है उनके जी, भी जी
जी। शुक्रिया मोहित कंधारी जम्मू से इस अपडेट के लिए। अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी फैसल मोहम्मद अली ने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से बात की।
ये पिछले साल से एक केस पाकिस्तान में चलना शुरू हुआ था और FIA जो पाकिस्तान का एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसमें एक अकाउंट से कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस होने का मुकदमा जो है वो उसके पास कंप्लेंट आई थी। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई तो फिर एक पूरा सिलसिला चल निकला जिसमें फेक अकाउंट्स जो थे वो कई सामने आए। ये जो फेक अकाउंट्स थे इनमें कुछ फर्जी लेन देन किया गया था और मुख्तलिफ नामों के ऊपर ये अकाउंट्स थे। कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 35 अरब रुपए तक की जो रकम थी वो इन जाली अकाउंट्स में थी। बाद में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आती रहीं कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कुछ दोस्त, वो इन फेक अकाउंट्स के बेनिफिशरीज हैं। तो ये मुकदमा पिछले साल एक कराची की बैंकिंग अदालत से चलना शुरू हुआ और फिर बाद में वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में और इस्लामाबाद में ट्रांसफर हुआ और इसकी कई बार जो है वो हियरिंग होती रही। 28 मार्च को जो है वो गिरफ्तारी के लिए इन्होंने बेल जो थी वो अप्लाई की और फिर वो बेल जो है वो बार बार एक्सटेंड होती रही, लेकिन आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इनकी पिटिशन थी बेल एक्सटेंशन की उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी तो गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन उनकी बहन जो है फरियाल तालपुर उनको अभी अरेस्ट जो है वो नहीं किया गया।
शुमला एक बात बताएं कि पाकिस्तान में ये भी एक बड़ी अजीब सी बात रही कि हुकूमतों की तब्दीली के साथ जो है जो फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट या उससे जुड़े हुए जो दूसरे मुखालिफ पार्टी के लोग होते हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला कोई नया नहीं है, तो इसको भी कहीं उस नजरिए से तो नहीं देखा जा रहा है या देखा जाना चाहिए?
देखिए पाकिस्तान में जब ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो तो यही प्ली ले रही हैं और वो यही कहती हैं कि ये सब जो है ये एक सियासी रिवेंज है, इंतकाम है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा फैक्चुअली थोड़ा सा देखें तो ये अक्सर मुकदमे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इमरान खान जो कि पिछले अगस्त में आए थे, ये उनकी हुकूमत में या उनकी सरकार के बनाए हुए मुकदमे नहीं है। नवाज शरीफ जिस मुकदमे में गए उनको सजा हुई, उनको हटाया गया, एक पुराना मुकदमा था। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये जो सब मुकदमात हैं ये इमरान खान की पावर में आने से पहले से बन चुके थे और ये चल रहे थे मुकदमात। तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक हिस्ट्री ऐसी है और ऑपोजिशन अभी भी इसको यही ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है और वो ये समझती है कि सियासी इंतकाम है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बात होने लगी है और लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में आती जा रही है। और अभी भी जो रूलिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी, उसने उनकी कई सीनियर लीडर्स के ऊपर जो है वो मुकदमे ऐसे हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो कि चल रहे हैं। हाँ ऑपोजिशन अब ये इल्जाम लगाती है कि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ऑपोजिशन पार्टी या ऑपोजिशन लीडर्स की हैं, अभी तक पीटीआई का कोई बहुत बड़ा लीडर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पीटीआई के एक बहुत सीनियर लीडर थे पंजाब से, उनको भी डिटेन किया गया था, वो हिरासत में रहे हैं और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होती रही है।
ये थी इस्लाम आबाद से शुमाइला जाफरी और उनसे बात कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली। हम यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज देश के नाम एक अपील की है और लोगों से 30 जून तक बेनामी संपत्ति की जानकारी देने को कहा है। बढ़ते हैं आगे। आज जाने माने नाटककार, फिल्मकार और अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन हो गया। वो 81 साल के थे। उनके निधन पर कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने गिरीश कर्नाड को श्रद्धांजलि दी है। कर्नाड के योगदान को लेकर बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने रंगकर्मी एमके रैना से बात की।
रैना साहब, गिरीश कर्नाड के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको उनके किस रूप ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया?
मैं तो जिस भी कलाकार को देखता हूँ, मैं उसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहता हूँ वो कितना अच्छा लिखता है या वो कितना अभिनेता अच्छा है, मैं देखता हूँ कि वो वक्त के साथ साथ ज़िंदा भी है कि उसको उसने छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि गिरीश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है, अच्छे लेखन के साथ साथ अच्छे निर्देशन फिल्मों में किया है, लेकिन साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आई देश में उनके में सामने की लाइन में खड़े होकर आक्रोश दिखाना, प्रोटेस्ट करना, अपनी बात करना, ये भी साथ चलता था। तभी तो एक टोटल पर्सनैलिटी के रूप में आप उनको देखते हैं।
और ये आखिरी वक्त तक चला,
पूरे वक्त तक ऑक्सीजन मास्क लगा के, ट्यूब नाक में लगा के, तब तक।
उन्होंने कन्नड़ में लिखा, तुगलक नाटक जैसे बहुत ही फेमस हुआ, तो ये तुगलक जो कन्नड़ में लिखा वो हिंदी में सबसे पहले मंचित किया गया, ये कैसे हुआ? हिंदी थिएटर से या हिंदुस्तानी थिएटर से उनका जो ताल्लुक था वो कैसा था?
देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो बीच में पुल बना वो बना बीवी कारंत। बीवी कारंत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्नातक रहे थे, इब्राहिम अलकाजी निर्देशक थे। उस वक्त अलकाजी साहब ने नए नए प्रयोग शुरू किए थे, जैसे कि दिल्ली में कोई अच्छा थिएटर नहीं था जिसमें वो प्ले कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो थिएटर से बाहर ही निकले। जैसे कि आषाढ़ का एक दिन को नई जिंदगी दे दी उन्होंने, एक आंगन में कर दिया उसको। धर्मवीर भारती जी का प्ले अंधायुग को खंडहरों में कर दिया, और तुगलक को भी उन्होंने ये देखा कि पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि इसको खंडहरों में किया, तालकटोरा के रूइंस में इसको किया गया। लेकिन उस वक्त उन्होंने खुद उसका निर्देशन नहीं किया, निर्देशन अपने स्टूडेंट जो उनके सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे, बेस्ट एक्टर अभिनेता थे, वो थे ओम शिवपुरी। कारंत भी थे एनएसडी में और जैन कौशल भी थे। कारंत जी को कहा तुम्हें हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, तुम ट्रांसलेट करो और उर्दू का जो मामला है वो जैन कौशल संभालेंगे, और इस तरह से बन गया प्ले। और अलकाजी साहब ने इसका एक बहुत ही अद्भुत सेट बनाया, जो इसकी जो हिस्टोरिकल प्रोडक्शन है वो ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 60s में।
आपका क्या कभी निजी उनसे ताल्लुकात रहे? आपने उनके साथ कभी कुछ काम किया या उनको दूर से ही देखा?
दूर से, थोड़ा नज़दीक से, लेकिन काम नहीं एक साथ किया। वो संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन रहे, मैं वहाँ पर काउंसिल में था। और उनका सबसे खूबसूरत जो मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे तुगलक से निकल के हाईवदन, हाईवदन से लेकर तालदंडी, तालदंडी से लेकर बिखरे बिंब तक जब पहुँचते हैं तो आप देखेंगे क्राफ्ट धीरे धीरे बदलता है, धीरे धीरे उसकी सारी प्रस्तुति की भाषा बदलती है। तो क्राफ्ट इनका समझ बहुत थी।
सिनेमा भी उन्होंने किया, लेकिन सिनेमा या बम्बई की जो जो माहौल है वो उनको निगल नहीं पाया, तो सिनेमा ने ऐड किया या थोड़ा सा निकाल लिया उनमें से?
वो एक ऐसा समय था, अगर आपको 70s का ख्याल आएगा, कि समांतर सिनेमा की बुनियाद जो पड़ी थी मृणाल सेन की फिल्म से, सरजीत रे पहले किए थे फिल्म, उसके बाद मनी कौल, कुमार शाहनी, गिरीश कर्नाड, ये सब एक अपने अपने क्षेत्रों में एक नए सिनेमा का जन्म देना चाहते थे। उसमें इनका भी एक योगदान ज़बरदस्त रहा, जब उन्होंने काडू बनाई फिल्म और कुछ नॉवल्स थी, लिटरेरी नॉवल्स जो इन्होंने उठाई वहाँ। आप ऐसे हस्तियों को निगल नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे इंसान से हु वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन सिनेमा, नाटक में
और समाज में भी,
समाज में भी वही तो समाज से निकला।
मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे एक्टर्स जो नामी गिरामी हैं वो सामाजिक मुद्दों पर बोलने से थोड़ा कतराते हैं, लेकिन गिरीश कर्नाड एक अपवाद थे, वो आखिरी वक्त तक सामाजिक विषयों पर बोलते रहे, खुल के बोलते रहे। ये जो उनकी लेगेसी है, क्या ये लोगों तक फैलेगी, नए पीढ़ी के जो कलाकार हैं, या उनके साथ ही चली जाएगी?
देखिए, मुझे लगता है कि वो फैली हुई है, लेकिन वो दिख नहीं रही इस वक्त मुझे, मगर मैं ये जानता हूँ कि वो सेंटिमेंट और वो जो समझ है वो नौजवानों में मुझे बहुत दिखती है। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ देश में, मैं हमेशा देखता हूँ कि इतनी इंस्पायरिंग आइडियाज़ लेके आते हैं, सूझबूझ जो इस देश को ज़रूरत है, जिसकी इस वक्त परेशानी बहुत भी लोगों को है, और वो बीज बोए गए हैं, वो फिर अंकुर फूटेंगे उसके।
दिवंगत गिरीश कर्नाड पर रंगकर्मी एम के रैना से बात कर रहे थे बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो एडिटर राजेश जोशी। आज सोमवार है और आपको इंतजार होता है अपनी चिट्ठियों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे की तरफ से भी नमस्कार। अब आप चिट्ठियों की शुरुआत कीजिए, मुझे लगता है आज पूरा ये कार्यक्रम रेहान फजल की विवेचना को समर्पित है।
बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए कि रेहान फजल स्पेशल। तो पहला ईमेल जो है वो फारूक अब्दुल्ला फिजा ने भेजा है, ये रक्सौल से भेजते हैं, बिहार से, और ये कहते हैं कि नमस्कार, भारत प्रोग्राम में रेहान साहब द्वारा विवेचना सुनी, बहुत अच्छी लगी और कर्नल गद्दाफी के विषय में सभी जानकारियां बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरा खत जो भेजा है वो संपूर्णानंद गुप्ता ने लिखा है और ये कह रहे हैं हिंदी ऐप पर दिन भर और नमस्कार भारत सुनने में मुश्किल आ रही है।
अगर ऐप के जरिए आप हिंदी के कार्यक्रम सुनते हैं और आपको किसी किस्म की मुश्किल आ रही है तो हम उसको अपनी तकनीकी जो टीम है लंदन में और यहाँ उनके सामने रखेंगे और इस समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
आगे बढ़े तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लिखा है भूपेंद्र छाबरा ने, तो उन्होंने ये बोला है कि 30 मिनट के इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक बड़ा बढ़िया प्रोग्राम आप प्रेजेंट करते हैं और वो है विवेचना और गद्दाफी और नरगिस पर जो दोनों ही रिपोर्ट है उन्हें बहुत पसंद आई। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इतनी ऑनेस्ट और इम्पार्शल रिपोर्टिंग बीबीसी करता है तो इसीलिए वो इस बीबीसी को सुनते भी हैं। और उनके विचार में वो एक बात और कहना चाहते हैं कि अब कुछ ऐसे भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाएं जिसमें भारत की नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर सवाल जवाब हो और लोगों के ओपिनियन हो। मेरे ख्याल से ये एक शो हमारा
जो
होता भी।
छाबड़ा साहब, वो इंडिया बोल जो कार्यक्रम हाँ। है उसमें तमाम तरह के जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स के जो विषय होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात ये लगी कि हमारे श्रोता कहाँ कहाँ हैं। सिडनी में हमें सुनते जब होंगे तो एक तो देश के साथ इनका सीधा संपर्क बनता है, हमारी आवाज़ें सुनते हैं, हिंदी भाषा में सुनते हैं। तो छाबड़ा साहब, मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने दूर रह करके इन कार्यक्रमों की जो महत्ता है, इनका जो महत्व है, ये समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जंग बहादुर सिंह लिखते हैं जमशेदपुर से और ये लिख रहे हैं कि कर्नल गद्दाफी का जो 7 जून को उनका जन्म दिवस भी था और उस समय जो ये साप्ताहिक विवेचना की वो बहुत शानदार लगी, जानकारी से भरपूर उस विवेचना के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप तो पुराने श्रोता हैं।
आगे बढ़े तो अहमदाबाद गुजरात से अनिल कांत परमार लिखते हैं कि गद्दाफी पर रेहान फजल की विवेचना बहुत दिलचस्प थी, मैंने इसे 7 जून की शाम को सुना, अगले दिन फिर से प्रसारित क्यों नहीं किया।
क्यों नहीं किया नहीं कह रहे, वो कह रहे अगले दिन फिर से प्रसारित क्यों किया।
ओ अच्छा,
हाँ मैं देख रहा हूँ उसको क्यों। वो दरअसल होता यह है कि दिन भर के कार्यक्रम में जो विशेष प्रोग्राम होता है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारे सब श्रोता उसको सुनते हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, तो दूसरे दिन सुबह के कार्यक्रम में हम विशेष कार्यक्रमों को एक तरह से पुनर्प्रसारित करते हैं।
अगला खत है, आफ्ताब लिखते हैं कि रेहान फजल की विवेचना पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी।
पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, अच्छा हाँ। तो ये आफ्ताब कहाँ के हैं, इन्होंने कुछ नाम लिखा है,
इन्होंने अपनी जगह नहीं बताई है कहीं भी।
हाँ तो भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप चिट्ठी लिखें, ईमेल लिखें तो अपना पता कम से कम जरूर लिख दें।
इन्हें इसलिए भी लगा क्योंकि उन्होंने कहा कि गद्दाफी के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें ज्यादा कही गई, उन्हें ये भी लग रहा है कि गद्दाफी से पहले, उनके दौरान और उनके बाद लीबिया की आर्थिक स्थिति को भी सामने रखना चाहिए।
ये आपकी आलोचना है, आलोचना शर्मा थे और ये बिल्कुल आपकी बात को रेहान फजल तक पहुंचाया जाएगा, तो रेहान साहब के पास जरूर किसका कुछ जवाब होगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप एक कार्यक्रम में हर चीज नहीं समेटते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक सभी कुछ लाना चाहिए, आदर्श स्थिति ये होती है।
अगला ईमेल संयुक्त अरब अमीरात से दुबई से भेजा है डॉक्टर एस आर लखेपुरी ने और ये लिखते हैं कि 7 जून की विवेचना लीबिया और कर्नल गद्दाफी के बारे में जो बीबीसी अनमोल रत्न रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत किया गया सुनकर अच्छा लगा, इनकी प्रस्तुति ऐसी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
इसके अलावा और भी अगर रेहान फजल की तारीफ में ईमेल चिट्ठियां आई हैं तो आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ जाइए।
बिल्कुल,
एक के बाद एक।
ये खत भेजा है जय हिंद वंशकार ने और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से इन्होंने भेजा है और इन्होंने भी यही तारीफ की है कि विवेचना उन्हें बहुत अच्छी लगी। आगे बढ़े तो मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस की उपेक्षा की गई है, कोई विशेष रिपोर्ट ना देकर अच्छा नहीं लगा।
देखिए लंबोरिया जी, हमारा ये मकसद तो नहीं था कि मजदूर दिवस की उपेक्षा की जाए, लेकिन हाँ उस दिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं चली होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 मई को ही मजदूरों को याद किया जाए, साल के 365 दिन भी याद किया जा सकता है, लेकिन हाँ इसका प्रतीकात्मक महत्व ज़रूर है। आई इसमें आपकी बात सही है कि 1 मई को पूरे दुनिया भर के मजदूर अपनी एकजुटता जाहिर करते हैं, अपना दिवस मनाते हैं, तो उसमें आप भी की उम्मीद होगी कि BBC में कुछ रिपोर्ट प्रसारित हो। हम ख्याल रखेंगे अगली बार से कि इसमें कुछ न कुछ हम लोग प्रसारित करें, लेकिन अब समय नहीं बचा तो हम चलते चलते पता बताते हैं और श्रोताओं से इजाज़त लेते हैं। पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर। नमस्कार श्रोताओं, इसी तरह से आप अपने खत हमें लिखते रहें। बढ़ते हैं आगे। आज तेज तर्रार बल्लेबाज युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 1 ओवर में 6 छक्के जमाने समेत कई नायाब रिकॉर्ड बनाने वाले युवराज सिंह ने भारत को साल 2011 में वर्ल्ड कप दिलाने में सबसे अहम रोल निभाया था, लेकिन वो बीते 2 साल से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे। सुनिए आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
बिग बॉस तो मैं हूँ बॉस। नहीं, अभी बोला ना, मेरा टारगेट है अपनी कंट्री के लिए खेलना बस।
जी हाँ, ये आवाज है कभी क्रिकेट के दुनिया के जगमगाते सितारे रहे युवराज सिंह की, जिन्होंने साल 2003 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जबकि एक दिवसीय क्रिकेट तो वो साल 2000 में शुरू कर चुके थे। और जो आवाज हमने युवराज सिंह की सुनवाई वो साल 2013 की है, जब वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली आए थे। पहले बात उसी कार्यक्रम की जिसमे उन्होंने सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर से जुड़ा किस्सा भी सुनाया।
मेरे को सचिन ने कोई 6 महीने पहले बताया था कि उसका थोड़ा बैटिंग का स्टाइल मेरे ऐसा है। 2 दिन पहले मैंने उनको बैटिंग करते हुए देखा तो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि बचपन में मैं चंडीगढ़ में जब खेलता था कि मैं ही बैटिंग कर रहा हूँ।
युवराज सिंह के ये किस्से भी 6 साल पुराने हो गए, देखते देखते वक्त गुजर गया। आज अर्जुन तेंदुलकर का सपना भारत के लिए खेलना होगा, लेकिन आज युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 37 साल के युवराज सिंह ने 2020 टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इस दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। उन्हीं दिनों हमने उनके पिता युवराज सिंह से बात की।
मुझे सबसे ज्यादा ख्याल उनकी सेहत का है। काफी कॉम्पैक्ट खेलना शुरू कर दिया है। हम 3-4 दिन पहले इकट्ठे थे बॉलिंग मशीन पे, वो बैटिंग कर रहे थे तो मैं देख रहा था, तो मेरा ख्याल से काफी उन्होंने इम्प्रूव किया है। मेरा सपना जब से मैंने खुदा से इल्तजा करके यूवी को मांगा किसी खास कारण के लिए, वो भी पूरा नहीं हुआ है कि इंडिया को वो कैप्टन करें।
वो सपने भी क्या जो पूरे हो जाएं, लेकिन युवराज सिंह ऐसा नाम नहीं जिसे आसानी से भुला दिया जाए। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनका प्रदर्शन रहा है बहुत ही जबरदस्त। एक ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर रहे हैं। किस तरह से 6 छक्के लगाए थे 2007 T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। जहाँ तक 50 ओवर और 20 ओवर का गेम का फॉर्मेट है, इसमें कोई शक नहीं युवराज सिंह बहुत ही माहिर, बहुत ही जबरदस्त मैच विनिंग प्लेयर थे। जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट का सवाल है, जो उनमें काबिलियत थी, जो उनका पोटेंशियल था, शायद वो पूरा नहीं कर पाए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि युवराज सिंह की नई राह भी उतनी ही शानदार और चमकदार होगी जितनी राह क्रिकेट की रही।
विश्व कप में आज वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच है। वेस्टइंडीज ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था और दक्षिण अफ्रीका अभी 29 रन बना के 2 विकेट पर खेल रही है और मैच वर्षा के कारण बाधित है। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
BBC समाचार। बहुचर्चित कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद और सबूत मिटाने के दोषी 3 पुलिसकर्मियों को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हवाला के पैसे बाहर भेजने के आरोप हैं। अल्जीरिया में जारी बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी जांच के तहत एक और बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। माली से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक देश के मध्य इलाके में हुए एक नरसंहार में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। रवांडा ने युगांडा से लगी अपनी व्यस्ततम सीमा चौकी को 3 महीने बाद फिर से खोल दिया है। दोनों देशों के बीच हुए तनाव के चलते इसे बंद कर दिया गया था। अब इस रास्ते से ट्रक और अन्य वाहन आ जा सकेंगे, लेकिन रवांडा के लोगों को युगांडा जाने की अनुमति अभी भी नहीं दी गई है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथों में और इस पूरे कार्यक्रम का संपादन किया वात्सल्य राय ने। अब से कुछ ही देर में बजेंगे रात के 8, लेकिन आपसे अगली मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। लेकिन तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।